नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव रैली में कहा, विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर अलोकतांत्रिक तत्वों को पराजित किया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सीबीआई प्रमुख को सौंपने का निर्देश दिया। आलोक वर्मा से सीवीसी की रिपोर्ट पर सोमवार तक जवाब मांगा। केरल में शबरीमला मंदिर आज शाम खुलेगा, क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान गज से 11 लोगों की मृत्यु, राहत और बचाव कार्य जारी। बिहार सरकार ने राज्य की करीब 5,000 पुलिसकर्मियों का तबादला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 72 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भाजपा की चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र में जनजातीय लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर अलोकतांत्रिक तत्वों को पराजित कर दिया है।
सामने मौत के खेल खेले जा रहे थे, फिर भी डरे बिना, झुके बिना, थके बिना इतनी भारी मात्रा में मतदान किया, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की ताकत को छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों बहनों ने सिद्ध कर दिया है। और हिंसा के रास्ते जनता के अधिकारों को दबोचने वाले लोगों को करारी चोट पहुंचाई है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से दूसरे चरण में भी भारी मतदान करने का आग्रह किया।
20 तारीख को आप अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, इतना भारी मतदान करो कि बस्तर के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत के प्रति आपका भी एक गौरवगान थप्पड़ लग जाए।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हर सरकार का उद्देश्य केवल कुछ का ही नहीं बल्कि सभी का कल्याण होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास के लाभ सभी को मिले। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया लेकिन उनके पास लोगों से कहने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज बब्बर और नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी छत्तीसगढ़ के दो दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह जंगगीर में चुनाव सभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी आज शाम चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग का दल राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत, निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा के साथ आज सुबह राज्य के दो दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। आयोग का दल आज शाम ही जयपुर पहुंचेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आकाशवाणी को बताया,
कमीशन शाम को जयपुर पहुंचेंगे। आज ही वहां पॉलिटिकल पार्टीज के कंसर्न्स जानेंगे, उनकी चिंताएं जानेंगे। वहां सिविल सोसाइटी और डिसेबिलिटीज के ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी चर्चा होगी। कमीशन पूरा संतोष करना चाहेगी कि 7 दिसंबर को होने वाली पोलिंग के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग राज्य में कल भी चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा।
आयोग का कल जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के उच्च अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने का कार्यक्रम है। आयोग कल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा भी करेगा। इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद नामांकन दाखिल करने के काम ने अब गति पकड़ ली है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के पहुंचने के साथ ही चुनाव अभियान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज बाद में ग्वालियर में भी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। विधानसभा की 230 सीटों के लिए कुल 2,907 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान इस महीने की 28 तारीख को होगा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। उन्होंने सागर जिले के देवरी में चुनावी रैली में यह आश्वासन दिया। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही राज्य में चुनाव गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज पार्टी के प्रचार में भाग लेने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए इस महीने 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। राज्य में 47 पंचायत ब्लॉकों के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें जम्मू क्षेत्र के 21 ब्लॉक, कश्मीर घाटी के 16 और लद्दाख क्षेत्र के 10 ब्लॉक शामिल हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए गांवों में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। ये समाचार हमारी आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
यार श्याम, तुम्हारे मोहल्ले में कचरे का ढेर कैसे साफ हुआ?
ये सब तो स्वच्छता ऐप की वजह से हुआ है।
स्वच्छता ऐप?
हाँ भाई, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का स्वच्छता ऐप फोन में डाउनलोड करो। इसमें शहर की स्वच्छता से संबंधित सारी शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। हमें बस एक फोटो खींच के अपलोड करनी है और ऐप में लोकेशन अपने आप आ जाएगी, जिसे नगर निगम में भेजा जाएगा और फिर वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल के लिए भेजा जाएगा और इसका समाधान तुरंत किया जाएगा। समझे बंधु?
अरे ये तो बढ़िया है, मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ स्वच्छता ऐप।
आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को उनसे संबंधित केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाए। शीर्ष न्यायालय ने श्री वर्मा से सोमवार तक सीलबंद लिफाफे में अपना उत्तर देने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल को भी उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें सीवीसी की रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा ने उन्हें अपना कामकाज करने से रोकने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस पर शीर्ष न्यायालय सुनवाई कर रहा था। केरल में शबरीमला में सुप्रसिद्ध अयप्पा मंदिर कड़ी सुरक्षा के बीच आज शाम 5 बजे खुलेगा। 2 महीने की वार्षिक तीर्थयात्रा के मद्देनजर मंदिर खुल रहा है। मंदिर परिसर में और उसके आसपास 4 स्थानों पर कल रात से 7 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद हो रहे विरोध को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
पट्टनमतिट्टा के जिला अधिकारी ने इलावुंकल, निलक्कल, पंपा और सनिधानम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मंदिर आज शाम 5 बजे खुलेगा और श्रद्धालुओं को दोपहर बाद ही मंदिर के लिए रवाना होने की अनुमति दी जाएगी। मंदिर में वार्षिक पूजा उत्सव शुरू होने पर नव निर्वाचित प्रमुख पुजारी आज अपना प्रभार संभालेंगे। पुलिस महानिदेशक लोकनाथ बेहरा ने बताया कि मंदिर बंद होने के बाद किसी को भी सनिधानम में रुकने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि समूचे क्षेत्र को 6 हिस्सों में बांटा गया है और महिलाओं सहित 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से शमिला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश झा।
बिहार सरकार ने राज्य के करीब 5,000 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने आकाशवाणी को बताया कि 4,994 पुलिस अधिकारी 10 वर्ष से एक ही स्थान पर तैनात थे। उन्हें इस महीने की 30 तारीख तक नए स्थान पर पदभार संभालने का निर्देश दिया गया है। नागालैंड के वोखा शहर के लोग स्वच्छ भारत मिशन में भाग लेते हुए उसे सफल बनाने में जुटे हैं। वोखा जिला नियोजन और विकास बोर्ड की पहल पर 2018 को इस क्षेत्र का स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया है। इस वर्ष का विषय है स्वच्छ वोखा सुंदर वोखा। पेश है हमारी कोहिमा संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट।
वोखा शहर में प्रतिदिन घरों से लगभग 1 मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा होता है। इनके प्रबंधन और ठोस कचरे को अलग करने के लिए वोखा टाउन काउंसिल ने कॉलोनियों में कचरा इकट्ठा करना शुरू किया है। इस काम में समुदायों का सहयोग हासिल करने के लिए हर 2 महीने में बड़े पैमाने पर वार्ड और कॉलोनियों को शामिल किया जा रहा है। वोखा के तुम डेमो क्योंग ने हमें बताया।
स्वच्छ भारत स्कीम
अगर अच्छी तरह से लागू किया जाए तो स्वच्छ भारत योजना बहुत अच्छी योजना है। केंद्र सरकार की ये योजना वोखा शहर सहित भारत के कोने कोने में पहुंच गई है।
स्वच्छ भारत मिशन का संदेश देश में हर जगह पहुंच गया है और नागालैंड का वोखा शहर भी उनमें से एक है जहां लोग स्वस्थ जीवन के लिए इस अभियान में जुट गए हैं। कोहिमा से असुनियो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों का शुभारंभ करेंगे। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष सीके प्रसाद ने कल शाम मीडिया को बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री राठौड़ ने कहा कि जिम्मेदार और निष्पक्ष मीडिया राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। उन्होंने प्रिंट मीडिया में नैतिकता और उच्च मानक बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए भारतीय प्रेस परिषद को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। चक्रवाती तूफान गज आज सवेरे तमिलनाडु के तटों को पार करते हुए इस समय डिंडिगल क्षेत्र में केंद्रित है। तूफान कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी ने बताया कि तूफान के तटवर्ती क्षेत्र से गुजरने के बाद 11 लोगों की मृत्यु हुई है। सेलम में ओमालोर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि तूफान के कारण मरने वालों के परिवारों को सरकार 10-10 लाख रूपये देगी। उन्होंने कहा कि तूफान से हुए नुकसान की बहुत जल्द समीक्षा की जाएगी और राहत सहायता के लिए इसकी रिपोर्ट केंद्र को पेश की जाएगी। तूफान के असर से कई तटवर्ती जिलों में वर्षा हुई है। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी से बात की और तूफान गज से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री पलनीसामी ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति और प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत उपायों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि ये कार्यक्रम की 50वीं कड़ी होगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर और mygov.in पर अपने विचार भेज सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भी भेजे जा सकते हैं। श्रीलंका की संसद में लगातार तीसरे दिन आज भी शोरगुल जारी रहा और कुछ सदस्य अध्यक्ष के आसन पर जा पहुंचे जिसकी वजह से अधिवेशन शुरू होने में देरी हुई। आखिरी खबर मिलने तक अध्यक्ष सदन में उपस्थित नहीं थे क्योंकि नई सरकार के कुछ मंत्रियों ने उनके आसन पर कब्जा कर लिया था। बॉम्बे शेयर बाजार के तीसरे पहर के कारोबार में संवेदी सूचकांक 192 अंक के वृद्धि के साथ 35,453 पर था। निफ्टी भी 50 अंक बढ़कर 10,667 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव रैली में कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर अलोकतांत्रिक तत्वों को पराजित किया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सीबीआई प्रमुख को सौंपने का निर्देश दिया है। आलोक वर्मा से सीवीसी रिपोर्ट पर सोमवार तक जवाब मांगा है। केरल में शबरीमला मंदिर आज शाम खुलने के मद्देनजर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान गज से 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। बिहार सरकार ने राज्य के करीब 5,000 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।